ब्राह्मण समाज में जो अछूत। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपनी अंतिम पुस्तक तुलसीदास पर लिखना चाहते थे, महाकवि का जीवन संघर्ष उन्होंने अपने ही जीवन संघर्ष जैसा लगता था। तुलसीदास का स्मरण शीर्षक निबंध में उन्होंने इसकी ओर संकेत करते हुए लिखा है, मुझे तुलसीदास का स्मरण करने में विशेष आनंद आता है। यह जो व्यक्ति आज हमारे लिए इतना पूज्य है, कोटि कोटि भारतवासियों के हृदय और मस्तिष्क पर बल दे रहा है, वह कोई राजा महाराजा नहीं था, लक्ष्मी का लाडला सपूत नहीं था, शास्त्रार्थ सभा में पंडितों को पराजित करने वाला कीर्ति जिजीषु पंडित नहीं था, विद्यापीठों की कठोर रणभूमि के अदृश्य विकट संग्राम में विजयी महारथी नहीं था, बल्कि बहुत ही साधारण गृहस्थ परिवार में उत्पन्न हुआ था। औसत से कहीं नीचे उसकी आर्थिक स्थिति थी। अपनी दीनता बताने के आवेश में कभी कभी इस महापुरुष ने ऐसी बातें कही हैं, जो हृदय को गला देती है, हाय हाय कैसा भाग्यहीन रहा होगा वह बालक जिसके माँ बाप ने जन्मते ही स्वर्ग का रास्ता लिया। माता पिता जग जाए तज्यो, और फिर विधि हूँ न लिखी कछु भाल भलाई। जीवन भर इस महान पुरुष को अपनी वह दारुण दुर्वस्था नहीं भूली। बारे में बारे तेल ललात बिललात द्वार द्वार फिरो, जानत हो चारी फल चारी हो चणक को। इतने बड़े पुरुष के भाग्य में क्या यही लिखा था कि मांगे के खैबो मसीती को सोईबो। गरज जन्म के समय परिस्थितियां बड़ी विषम थी। परिस्थितियां बाल्यकाल में तुलसीदास के प्रतिकूल थी, वह बहुत प्रतिकूल, और युवावस्था में युवावस्था भी बहुत सुख की नहीं थी। पंडितों में काशी में पंडितों ने उन्हें बड़ा तंग किया था, गाली गलौज डांट फटकार हमेशा से ही ऐसा होता आया है। बड़े तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकने से लोग गाली गलौज पर उतर आते हैं, कहना शुरू किया यह जुलाहा है, यह अघोर पंथी है, यह है, यह वह है। तुलसीदास हैरान, हे विधाता इतने लोग दारुण क्यों हो जाते हैं? बोले, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाहा कहो, को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब इत्यादि। बड़ी मानसिक ग्लानि के समय तुलसीदास जैसा महात्मा ऐसी बात कह सकता है? अपने प्रसिद्ध भजन कबहुक हो यही रहनी रहोंगो में उन्होंने कहा है कि कभी ऐसा होता है कि मुझे संत स्वभाव मिल जाता और परश वचन अति दुसह स्त्रवन सुनी ते ही पावक न दहोंगो। कितनी करुण प्रार्थना है, पर उस वचनों का प्रहार उन पर हुआ था, चोट भी लगी थी, तिल मिला कर रह गए थे, उत्तर तो वे क्या देते। इतना इतनी मात्रा में जहर पीकर इतना अमृत देने वाला आदमी चोट का जवाब चोट कैसे दे सकता था? परंतु जलन होती थी। वे अपने राम से यह प्रार्थना करते थे कि नाथ शक्ति दो कि इस आग में न जलो। वृद्धा अवस्था में उनकी क्या अवस्था थी, कहना कठिन है। सम्मान थोड़ा मिलने लगा था। डॉक्टर माता प्रसाद जी ने खोज निकाला है कि उन्हें महंती भी मिल गई थी। कुछ दिनों के लिए तुलसी गुसाई भयो भोले दिन भूल गयो, लेकिन निभी नहीं। निभ कैसे सकती है? जलते अंगारे को आंचल में कैसे बांधा जा सकता है? महंती छूट गई। वृद्धा अवस्था में काशी में भयंकर महामारी हुई। तुलसीदास को भी बीमारी हुई, दारुण बीमारी। उन्होंने उसे भी सहा, पर उस वचन की चोट को निर्घात सह जाने वाली महात्मा को यह बीमारी कहाँ तक विचलित करती। बोले, राम नाम को जो मैं भूल गया था उसी का यह फल है। ताते तनु पेखियत घोर बरतौर मिस फूटी फूटी निकसत लोन राम को राम नाम को। सो अंतिम अवस्था भी बहुत सुख की नहीं मालूम पड़ती। औसत आदमी से कुछ खराब ही कही जा सकती है। ग्रंथावली 11 494 से 95 पृष्ठ संख्या। जो द्विवेदी जी को निकट से जानता है वही जानता है कि तुलसीदास की यह दुखद जीवन कथा बहुत कुछ हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही आत्मकथा है। बचपन की वही दलिद्रता, जवानी में काशी के पंडितों का वही घृणित विरोध और अंत में थोड़े दिनों की महंती भी वैसी ही। एक बार आत्म परिचय मांगे जाने पर द्विवेदी जी को फिर तुलसीदास याद आए। बात 1940 की है, तब वे शांति निकेतन में ही थे। वह आत्म परिचय कहीं छपा है या नहीं मालूम नहीं। पंडित जी के शांति निकेतन कालीन साथी पंडित मोहनलाल वाजपेयी के सौजन्य से उसकी जो प्रतिलिपि मुझे प्राप्त हुई है वह इस प्रकार है। विक्रम की 20वीं शताब्दी की दूसरी तिहाई खत्म भी नहीं होने पाई थी कि धराराम में अवतीर्ण हो गया। जन्म उसी अभोक्त मूल नक्षत्र में हुआ था जिसमें पैदा होने की सजा के रूप में कहते हैं बाबा तुलसीदास के माता पिता ने जन्मते ही उन्हें कहीं फेंक दिया था। हजारी प्रसाद तुलसीदास से अधिक भाग्यशाली हैं। पहले जन्म के बाद माता पिता ने शांति निकेतन स्वस्तयन के बाद उसे स्वीकार कर लिया, पर द्वितज्व की प्राप्ति के बाद अर्थात विश्वविद्यालय के समावर्तन के पश्चात मातृभूमि वाले प्रांत ने जो उठाकर बाहर फेंका सो अभी तक बंगाल में ही पड़ा है। अभी भी जीता चलता चल रहा है और आदमी सब मिलाकर बुरा नहीं है। भाग्य का श्राण जन्म से ही है, क्योंकि बूढ़ों ने उसे जो नाम शुरू में दिया था वह एक जबरदस्त घटना के कारण हमेशा के लिए विस्मृति के अपार सागर में डूब गया। कहीं से घर वालों को 1000 रुपए की आमदनी हो गई और जन साधारण ने इस अपरंपार धन राशि के ऐतिहासिक महत्व को स्थायी बना रखने के लिए हजारी नाम दे दिया। आदमी जैसा कि शुरू में ही कहा गया है बुरा नहीं है, थोड़ा कृतज्ञ भी है। इस डेमोक्रेसी के खतरे के युग में भी जन साधारण के दिए हुए नाम को प्रसाद के रूप में अब भी ढोए जा रहा है। यद्यपि जन्म के बाद अब तक का उसका नाम यह नाम कंट्राडिक्शन इन टर्म्स ही रहा है। इस युग में यह कम कृतज्ञता की बात नहीं कही जाएगी। तो ऐसा है यह हजारी प्रसाद। स्पष्ट ही यह आत्म परिचय में आत्मोपहास का जो फक्कड़ाना अंदाज है वह तुलसीदास वाली आत्मकथा की मर्म वेदना से एकदम भिन्न है। किंतु एक हल्की सी कथक यहाँ भी टीस रही है। मातृभूमि वाले प्रांत ने जो उठाकर फेंका, शांति निकेतन में निसंदेह सुख था लेकिन काशी से फेंके जाने का दुख कहीं ज्यादा अधिक है। वैसे काशी में दुख कम न था। काशी में पढ़ते समय कितने आर्थिक कष्ट का अनुभव हुआ था इसका कुछ अंदाजा पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को 19/9/1945 को लिखे पत्र के इस अंश से लगाया जा सकता है। हिंदू विश्वविद्यालय का संस्कृत कॉलेज न होता तो मैं शायद कुछ भी न पढ़ सकता था। मैंने इधर उधर से सीख कर थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ी और एडमिशन की परीक्षा में बैठा। प्रथम श्रेणी में पास हो गया। हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल स्कूल हिंदू कॉलेज में मैं बड़े उत्साह से इंटरमीडिएट में पढ़ने गया। मेरे घर की आर्थिक अवस्था की बात न कहना ही ठीक है। मुझे याद आता है कि पिताजी ने बड़ी कठिनाई के बाद गांव के एक व्यक्ति से 40 रुपए उधार लिए थे। यह मेरी इंटरमीडिएट की भर्ती कराई की प्रथम बलि थी। मैं इसके बाद केवल क्लास में बैठता और फीस नहीं देता। हिंदू विश्वविद्यालय में उन दिनों बहुत से गरीब विद्यार्थी थे जो जबरदस्ती क्लास में बैठा करते थे। साल के अंत में ध्रुव जी और मालवीय जी की कृपा से उनका उद्धार हो जाता था। मैं भी उसी श्रेणी में था। कई बार चेतावनी मिली पर मेरे पास एक कौड़ी भी न थी। संस्कृत कॉलेज में 15 रुपए वृत्ति मिलती थी और 5 रुपए का एक ट्यूशन करता था। कुछ खाता था, कुछ बचा कर घर भेज देता था। घर की अवस्था बड़ी दयनीय थी। आज भी याद करता हूँ तो रोए खड़े हो जाते हैं। साल के अंत में मेरा नाम कट गया। मैंने सुना था कि ध्रुव जी के पास जाने से सब ठीक हो जाता है। मैं डरते डरते प्रिंसिपल ध्रुव के कमरे में गया। वे कुछ झल्लाए हुए बैठे थे। शायद मेरे जैसे और भी लक्ष्मी के त्यक्त पुत्र उनकी सेवा में हाजिर हो चुके थे। मैंने अपनी कहानी सुनाई। बीच ही में झिल्ला कर बोल उठे, जाओ, मैं नहीं सुनना चाहता। यूनिवर्सिटी गरीबों के लिए नहीं है। जाओ ईटा ढो। मेरा अनुमान है कि वे किसी कारण गुस्से में थे, नहीं तो उनका स्वभाव दयालु था। परंतु मुझे तो जैसे बाण लग गया। मैंने आधी बात जहाँ की तहाँ छोड़ दी और उठकर प्रणाम करके तुरंत लौट आया। वे दरवाजे तक मुझे जाते देखते रहे। संभवतः मुझे पागल समझा होगा। मैं अपने संस्कृत कॉलेज के हॉस्टल में, जैसे विश्वविद्यालय के धनी मानी विद्यार्थी अस्तबल कहा करते थे, लौट आया और खूब रोया। मेरी पढ़ाई वही रुक गई। मेरे एक अध्यापक ने कहा कि चलो मैं तुम्हें ध्रुव जी के पास ले जाता हूँ। गरज पड़ती है तो 100 बार जाना होता है, पर मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। मैं नहीं गया। मालवीय जी के पास जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। बाद में केवल अंग्रेजी लेकर परीक्षा दी। वह भी एक मजेदार कहानी है। परीक्षा में फीस बहुत कम लगती थी, पर उतना दे सकने लायक भी मेरे पास पैसा न था। मेरे पास ओढ़ने के लिए कपड़े भी न थे। मुझे किसी से मांगने की कला भी नहीं आती थी। तो मैंने बगल में पोथी दबाई और कथा बाँचने चला गया। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कोआत आरा में मेरी कथा बैठा दी। वे खुद आर्य समाजी थे, पर मेरी सहायता के लिए उन्होंने इस बात की भी परवाह न की। कथा 7 दिन तक हुई और 8वें दिन चढ़ावा चढ़ा। 35 रुपए की एक रजाई, कुछ साड़ियाँ, कुछ कपड़े, कुछ धोतियाँ और प्रचुर अन्न मुझे मिला। रजाई कोआत के हकीम बंधुओं ने दी थी। मेरे जीवन में इससे बड़ी सहायता न कभी मिली और न कभी मिलेगी। तो मैं इंटरमीडिएट की नदी पार कर गया। आचार्य पास करने के बाद मैंने एक बार और कथा बाँची, शौकिया नहीं, आजीविका के लिए, क्योंकि पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और काशी में कोई नौकरी सुलभ नहीं थी। कथा न बाँचते तो क्या करते। प्रसंगवश पंडित व्योम के शास्त्री को जो आत्मकथा मिली थी, उसमें बाण भट्ट जी ने भी अपनी जवानी के आरंभिक बेकारी के दिनों में कथा बांधता है, और उसका भी क्षेत्र वही काशी का पार्श्ववर्ती जनपद। आखिर नौकरी मिली शांति निकेतन में था तो परदेश, लेकिन डूबते के लिए तिनके का सहारा भी काफी होता है। काशी के शांति निकेतन के लिए प्रस्थान शौक नहीं, लाचारी थी। यह दूसरी बात है कि वह लाचारी वरदान बन गई। शांति निकेतन में पैसे कम थे, लेकिन और बहुत कुछ था। स्वयं रविन्द्रनाथ जी थे और क्षिति मोहन सेन भी। इसके अलावा समूचे आश्रम का सांस्कृतिक वातावरण, विश्व भारती उस समय अपने उत्कर्ष के शिखर पर था। अतिरिक्त प्रलोभन यह कि पास की कलकत्ते ते पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी विशाल भारती जैसे प्रभावशाली पत्रिका भी निकाल रहे थे। यह सब था, फिर भी काशी के लिए मन में एक हुडक थी। क्या विडंबना है, जिस काशी ने अपनी गोद से उतार दिया उसी के लिए हुडक। काशी के प्रति आकर्षण विकर्षण के इस द्वंद का चरम रूप प्रकट हुआ 18 साल बाद, जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति पंडित अमरनाथ झा ने हिंदी विभाग के आचार्य पीठ के लिए आमंत्रित किया। इस संक्रमण की अंतरकथा सिर्फ एक जगह अंकित है, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन को लिखे पत्रों में, क्योंकि सुमन जी ही उस आमंत्रण के सक्रिय माध्यम थे। भाग्य की विडंबना यह है कि कुलपति के आमंत्रण के साथ विभाग के कुछ अध्यापकों के धमकी भरे पत्र भी आ रहे थे। मन में द्वंद्व उठा, द्वंद से ज्यादा पीड़ा। इस मानसिक स्थिति की पहली अभिव्यक्ति सुमन जी को लिखे 18/8/1948 के पत्र में इस प्रकार हुई। काशी से कुछ ऐसे पत्र आए हैं और अब भी आ रहे हैं जो बहुत घृणास्पद हैं। घृणास्पद शब्द में बड़ी व्यथा के कारण व्यवहार कर रहा हूँ। इनके लिखने वालों में कहीं कोई मनुष्योचित भाव है ही नहीं, केवल निरुत्साहित करना, धमकी देना, अखबारी कर्तने भेजना, गाली गलौज करना, यही क्या साहित्यिकता है? आपको आश्चर्य होगा कि इनमें एक सज्जन ऐसे हैं जो वृद्धावस्था में प्रपंच छोड़ने के उद्देश्य से काशी वास कर रहे हैं। केवल इन पत्रों के कारण मन में आता था कि एक बार स्वीकार कर लूं, मगर फिर सोचा कि यह भी अमर और क्रोध का निर्णय होगा। मनुष्य बनना ही मनुष्य का कर्तव्य है। जो लोग बेमतलब दाहिने बाएं जे बिनु काज दाहिने बाएं होते रहते हैं, वे भी कोई न कोई शुभ बुद्धि लेकर ही कर रहे होंगे। अंत में आपने जो मंत्र सिखाया था उसी को पढ़कर शांत हो गया। हम विषपाई जन्म के सहे अबोल कुबोल, मानत नेकुना अनख हम जानत अपनु मोल। चित्त अब शांत हो गया है, यद्यपि हित चिंतकों के ढेले अब भी मानस को क्षण भर के लिए विक्षोभ की तरंगों से अवश्य तरंगित कर जाते हैं। आपका पत्र तो नहीं आया, मैंने निर्णय कर लिया, अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। घर वाले तो बहुत अप्रसन्न होंगे कि हाथ आई लक्ष्मी को मैंने पैर से छेल दिया, पर भाग्य में जितना होता है उतना ही मंगलजनक होता है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी विश्वनाथ जी बुलाना नहीं चाहते। जिस दिन वे चाहेंगे उस दिन अन्य किसी को इतना क्षोभ नहीं होगा। मैं हृदय से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों का क्षोभ दूर हो और वे अपने योग्य आसन पर प्रतिष्ठित हों और संसार के सभी प्राणियों से इस अकिंचन से भी प्रेम करें। मेरा उनसे क्या झगड़ा हो सकता है भला? काश वे लोग जानते कि मैं शांति निकेतन में कितना सुखी हूँ। उनके स्वर्ग राज्य का मुझे कोई लोभ नहीं। जिस नाटक का आरंभ ही इतना कटु है वह अंत तक सुखांत नहीं हो सकता। भगवान उन्हें प्रसन्न रखे। मैं तो कहता हूँ ततैव वहास्तव नृत्य गीते। भला जिस जगह को पाकर आदमी मनुष्यता के स्तर पर न रह सके वह लेकर मैं क्या करूँगा? ये नाहम नामृता सयाम किम अहम तेन कुर्याम। आपने ऐसा कोई नाटक देखा है जिसमें नायक रंगमंच पर आता ही न हो? केवल प्रति नायकों के गर्जन तर्जन और राहगीरों की बातचीत तथा आकाश भाषितों के द्वारा ही नायक अस्पष्ट आभास पाया जाता हो। काशी वाला यह नाटक ऐसा ही था। इधर घर के लोग बराबर काशी जाने को कह रहे थे। आसपास के अन्य मित्र भी कहते थे कि काशी जाना अच्छा है। काशी से आए हुए घृणा इस पर चिथड़े भी कभी कभी वहां जाने के लिए उत्तेजित कर जाते थे। उधर रथी बाबू का लिहाज अंत में निर्णय छोड़ा अपनी अंतर्यामी पर। अंतर्यामी चुप, न राम न गंगा। मैंने बहुत विनय की कि बाबा कुछ तो बताओ, काशी जाना है। काशी जो मेरा स्वप्न है, जिसके एक एक कण में आकर्षण है, एक एक कण दर्शन में उन्माद है, गंगा की मनोहर उर्मियों से धौत वायु है, विश्वनाथ और अन्नपूर्णा की अहेतुक कृपा का प्रसाद है, उस काशी में जाना है। अंतर्यामी चुप, भला आदमी जो सोया सो करवट तक न बदली। फिर गुरुदेव, लोकेर कथा दिसने काटे, फिरसी ने आर हजार टाके, येन रे तोर हृदय जाने, हृदय तोर आछेन राजा। अब अंतर्यामी भी जागे, बोले मत जाओ, सब ते हो गया। जो बात स्वार्थ की दृष्टि से देखने से इतनी उलझी हुई लग रही थी, वही कर्तव्य की दृष्टि से देखने में एकदम साफ हो गई। इसमें क्या सोचना है भला? मेरे लिए दोनों ही संस्थाएं आराध्य हैं, दोनों का लक्ष्य एक है, मेरे भीतर कर्तव्य का द्वंद क्यों उपस्थित हो? काशी विश्वविद्यालय की सेवा तो मैं करूंगा ही, चाहे जैसे हो, पर शांति निकेतन छोड़ूंगा नहीं। वह भी गुरु भूमि है, यह भी गुरु भूमि है। दलिद्रता का अभिशाप यह है कि पैसे की चिंता करनी पड़ती है, पर दलिद्रता का एक वरदान भी है। पैसा हमें ज्यादा प्रलुब्ध नहीं कर सकता। और अंततः पैसा त्रिवेदी जी को प्रलुब्ध न कर सका। अर्थाभाव के बावजूद स्पष्ट है कि काशी के आकर्षण में पैसे के लोभ प्रलोभन की मिलावट थी। इसके अलावा शांति निकेतन न छोड़ने के पीछे मन में कहीं यह विचार भी था कि इस समय जब तक विश्व भारती का नवीन विश्वविद्यालय रूप सुप्रतिष्ठित नहीं हो जाता, जिसकी चर्चा चल रही थी, उसे छोड़ना कृतज्ञता होगी। इस तरह बात टल गई, मन का बोझ उतर गया। कम से कम उस समय ऐसा ही लगा। लेकिन 2 वर्षों बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने अपना निमंत्रण फिर दोहराया, इस बार अतिरिक्त आग्रह के साथ। वैसे इस बीच बाहर से कुछ और भी आकर्षक निमंत्रण आए, जिसमें एक बिहार सरकार का था। इधर विश्व भारती के अधिकारों का आग्रह भी रोक रखने के पक्ष में बढ़ने लगा। वेतन बढ़ाकर इतना कर दिया गया जितना उस समय विश्व भारती में किसी को नहीं मिलता था। यहाँ तक कि आचार्य क्षिति मोहन सेन और नंदलाल बोस को भी नहीं। मकान भी बढ़ाकर और बड़ा कर दिया गया, मगर काशी का आकर्षण और ही था। मन में फिर द्वंद्व शुरू हुआ। सुमन जी को 30/5/1950 को लिखे पत्र में अपने मन का संकल्प विकल्प इन शब्दों में व्यक्त किया। काशी का वह विश्वविद्यालय मेरी माता के समान है, विश्वविद्यालय भी और विश्व भारती भी, दोनों ने मुझे ज्ञान दिए हैं। मेरे 2 महान गुरुओं में एक वहाँ के प्रतिष्ठाता हैं, एक यहाँ के। फिर भी मैं कुछ दिनों से यह अनुभव कर रहा हूँ कि हिंदी भाषी क्षेत्र में रहूं तो शायद काम करने का अधिक व्यापक क्षेत्र मिले, यह मैं अनुभव करने लगा हूँ। हो सकता है कि यह ठीक नहीं हो, और आगे और काशी से बढ़कर और कौन स्थान हो सकता है। वहाँ विरोध है, पर मैं जानता हूँ कि वह देर तक न टिकेगा। पर कहीं कोई ऐसी बात है जो मुझे काशी और जाने को उत्साहित नहीं कर रही है। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था संभव नहीं है जो संभव हो सकती, कि जो लोग अध्यक्ष पद चाहते हैं वे अध्यक्ष हो जाएं और मुझे चुपचाप पढ़ाने लिखाने का काम ही दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा संबंध केवल विद्या विद्वानों और विद्यार्थियों से मित्रता का ही संबंध रहे, प्रतिद्वंद्वता का नहीं। और अंत में रुपया तो मुझे चाहिए ही, आपको इस विषय में क्या बताऊं? शायद आपको यह बताने की जरूरत नहीं कि यदि बिना रुपए के काम चल जाता तो मैं रुपए पैसे के लेन देन के चक्कर में कभी न पड़ता। पर गरीब का सबसे बड़ा शत्रु उसका पेट होता है, गरीब का दूसरा दुश्मन उसका सिर है जो झुकना नहीं चाहता, जो झुकना चाहता है वह भी शत्रु ही है। स्पष्टतः संकल्प विकल्प के मुद्दे वही थे जो 2 साल पहले थे, लेकिन इस बार जाने कैसे मन को यह समझा लिया कि विरोध ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। कहीं कोई ऐसी बात थी जो काशी जाने को उत्साहित नहीं कर रही थी, फिर भी यह आशा थी कि काशी आने पर काम करने के लिए अधिक व्यापक क्षेत्र मिलेगा और अंततः अंदर के अतर्क्य प्रतिरोध को अनसुना करके काशी आने का निर्णय कर लिया। सुमन जी को लगभग 1 महीना बाद 26/6/1950 को लिखा, मैंने तो बनारस आने का निश्चय कर लिया है, जो होना है सो होगा। फिर शांति निकेतन छोड़ने की पीड़ा पर इतना और कहा, 20 वर्षों से सुख दुख का संबंध है, टूटते टूटते भी बांध रहा है। मेरी मानसिक स्थिति की आप कल्पना कर सकते हैं। इसी मनः स्थिति में काशी आए, हुआ वही जो होना था। प्रतिद्वंदियों ने असहयोग का ऐलान कर दिया, सब कुछ प्रत्याशित ही था। साहस के साथ सामना करते रहे। 1.5 महीने बाद 31/8/1950 को सुमन जी को यह खबर दी, अब भी मैं पूर्ण स्वस्थ मानसिक रूप में नहीं हो पाया हूँ, पर अब पहले से अधिक स्थिरता का अनुभव करने लगा हूँ। प्याले में तो रोज ही तूफान आया जाया करते हैं, पर अब अभ्यास हो गया है। एक बात सुनकर आपको प्रसन्नता होगी कि व्यक्तिगत रूप से मेरे प्रति सबका व्यवहार बहुत शील और सौजन्य का है। कभी कभी कोई उल्टी सीधी बात होती भी है तो सीधे मुझे लक्ष्य करके नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह तो हुई ऊपरी सतह की बात, गहराई में कुछ और है। परंतु मैं भीतर ही मार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पतन हो गया है। यह बात किसी तरह मन से निकल नहीं रही है। जो मनुष्य अपनी ही आंखों में गिर जाए उससे बढ़कर दयनीय कौन हो सकता है। मैं ठीक नहीं जानता, या शायद जानबूझकर नहीं जानना चाहता कि किस इस प्रकार सोचने का क्या कारण है, पर मन छोटा हो गया है। मैंने यह पत्र आपको इस आशय से लिखना शुरू किया है कि अपने मन में संचित इस व्यथा को आप ही को सुनाकर जी हल्का कर सकता हूँ। शांति निकेतन के अपने मित्रों को यह बात लिखने में संकोच होता है, मगर मैं मन ही मन नित्य यह व्यथा अनुभव करता हूँ। मेरी हंसी तो लोप हो ही गई है, लिखने की उमंग भी जाती रही है। आया तब से कुछ भी नहीं लिख सका हूँ, कुछ भी नहीं। विरोधियों को क्या पता कि जो कष्ट वे दे रहे हैं वह उस पीड़ा के सामने एकदम तुच्छ हैं, जिससे उनका शिकार स्वयं विद्ध है। छोटे लोग उस आत्मग्लानि को समझ नहीं सकते जिसमें एक महान आत्मा अपनी ही नजर में गिर जाता है या गिरने का साहस एहसास करने लगता है। अब इसे परिवेश के कुछ अनुकूल पक्ष या प्रभाव कहिए या संकल्प शक्ति की अंततः विजय, धीरे धीरे यह स्थिर कर लिया है कि यही रहना है, पर सब समय मन स्थिर भाव से जम नहीं पाता। लगभग 6 महीने बीतने पर 7 मार्च 1951 की को सुमन जी को फिर लिखा। यह बात मेरे मन में बद्धमूल हो गई कि मैंने गलती की है। सुमन जी ने सपना देखा कि पंडित जी शांति निकेतन जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर द्विवेदी जी लिखते हैं, यदि आपका सपना सच हो सकता, मैंने एक दिन भी शांति निकेतन का सपना नहीं देखा। यह मेरे मन के किस भाव का सबूत है, यह तो कोई मनोवैज्ञानिक पंडित ही बता सकता है। पर एक बात आपको बता दूं कि अब मैं विश्वविद्यालय को फिर प्यारा करने लगा हूँ। 20 वर्षों का छिन्न सूत्र फिर नवीन हो उठा है, लेकिन मेरे मन का सबसे बड़ा द्वंद्व यह है कि मैं नौकरी करके इस संस्था की सेवा कर सकता हूँ या नहीं। यह बड़ा कठोर द्वंद्व है। मैं अगर साहसी होता तो द्वंद्व कब का मिट गया होता, किंतु अभी तो नहीं मिट रहा है। अपने चरित्र की सबसे बड़ी कमजोरी का संधान पाकर मैं दुखी भी हूँ और सुखी भी हूँ। फिर भी जैसे अपनी सारी व्यथा को किसी विशाल परोक्ष सत्ता को समर्पित करते हुए अंत में कहते हैं, मैंने कुछ भी सोचना इस संबंध में छोड़ दिया है। मेरा सोचा हुआ कुछ होता नहीं, मेरा वश होता तो मैं शांति निकेतन से यहाँ आता ही नहीं। पर बहुत सी बातें, यह गलत बात है कि मैं जो कुछ करता हूँ उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी ही है। तत्रैवम सति कर्तारम आत्मनम मन्यते तु यः पश्यत्यकृत बुद्धि तत्वानन स पश्यति दुर्मतिः। अपने को जिम्मेदार मानने वालों पर श्री कृष्ण भगवान का बहुत ज्यादा गुस्सा न होता तो दुर्मति कहकर डांट नहीं बताते। सो दुर्मति मैं नहीं हूँ। कहने की आवश्यकता नहीं कि अपने आप को समझाने के लिए यह एक प्रकार की युक्ति है, हेतुवाद मात्र। किंतु मन को इस तरह समझाते रहने के बावजूद उद्विग्नता से पूर्णतः मुक्त न हो सके। 1955 में अपनी पहली कीर्ति सूर्य साहित्य के पुनर्मुद्रण के अवसर पर निवेदन करते हुए लिखा, पुरानी बातों को पढ़ता हूँ तो हृदय में एक प्रकार की पीड़ा का अनुभव करता हूँ। कहाँ से शुरू किया और कहाँ आ गिरा हूँ। जो होना चाहा था वह नहीं हो सका। जो सोचा भी नहीं था उसके चक्कर में फंस गया हूँ। प्रसाद के चाणक्य ने भी तो कभी कुछ ऐसा ही कहा था, आनंद समुद्र में शांति द्वीप का अधिवासी ब्राह्मण मैं, चंद्र सूर्य नक्षत्र मेरे दीप थे, अनंत आकाश वितान था, सस्य श्यामला कोमला विषम्भरा मेरी शैया थी, बौद्धिक विनोद कर्म था, संतोष धन था, उस अपनी ब्राह्मण की जन्मभूमि को छोड़कर कहां आ गया। सौहार्द के स्थान पर कुचक्र, फूलों के प्रतिनिधि कांटे, प्रेम के स्थान में भय, ज्ञानामृत के परिवर्तन में कुमंत्रणा। उन्हीं दिनों चारु चंद्र लेख लिखा जा रहा था। इन अकारण शत्रुओं से चित्त इतना संत्रस्त था कि अनेतिहासिकता का खतरा उठाकर भी उनका जिक्र लाना पड़ा। दसवें परिच्छेद में सहसा स्वामी नेन नाना नंद प्रकट होते हैं, जिन्हें प्रजा संक्षेप में नाना गोसाई कहती है। ये नाना गोसाई स्वयं द्विवेदी जी हैं। नाना इसलिए कि अपने भाषणों में नाना शब्द का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करते हैं। जैसे नाना देशों से नाना जातियां आई, जिन्होंने नाना समय पर नाना आचार पद्धतियों के द्वारा नाना प्रकार से आर्य संस्कृति को समृद्ध किया। एकाधि बार उनके निकट के लोगों ने इस नाना बहुलता की ओर डरते डरते संकेत भी किया था। पंडित जी ने अपने विनोद प्रिय स्वभाव के अनुसार इसे चुपचाप ग्रहण करके नाना गोसाई के रूप में अमर कर दिया। नेह नाना नंद का नानत्व इस बात में भी है कि उनके मठ में कई प्रकार कई संप्रदाय के साधु थे। मठ में वे हाल ही में कई ही बाहर से आए हैं। उन्हीं का एक दुष्ट प्रतिद्वंदी है, वह भी बाहर से आया है, किंतु अब वह अपने को स्थानीय जन का ही अंग कहता है। उनके अनुयायी घुंडक साधु हैं। ये लोग तप तो कम करते हैं और मठ में उत्पात अधिक करते हैं। इसका नेता ही घुंडकेश्वर स्वामी कहलाता है। बहुत दिनों से वह नाना गोसाई के स्थान पर अपने को प्रतिष्ठित करने के प्रयत्न में है और इसके लिए राज शक्ति का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है। अब मध्ययुगीन धार्मिक संप्रदायों के बारे में जितने शोध ग्रंथ सुलभ हैं, उनमें से किसी में कहीं घुंडक साधुओं का उल्लेख तो मिलता नहीं, ना उनके गुरु घुंडकेश्वर स्वामी का ही। इसलिए यही मानना पड़ेगा कि यह द्विवेदी जी की कल्प सृष्टि है और पंडित जी की शब्द रचना की वृत्ति से परिचित लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं कि लोक भाषा का गुंडा ही सुसंस्कृत होकर घुंडक बन गया है। और घुंडकेश्वर कहते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सचमुच ही इस नाम से जाने जाने वाले एक सज्जन उन दिनों हुआ करते थे। जो हो, काशी आने पर द्विवेदी जी की काफी दिनों तक ऐसे ही छोटे लोगों के निम्न स्तरीय विरोध का सामना करना पड़ा और वे बुरी तरह त्रस्त रहे। फिर भला उन्हें तुलसीदास के काशीवास के दिन क्यों याद न आते। दरअसल विरोध तो था शुद्ध स्वार्थ का, एकदम निजी और व्यक्तिगत, फिर भी उसे साहित्यिक और सैद्धांतिक रूप तो देना ही था, जैसा कि अक्सर होता है। सो विरोध का यह रूप दिया गया कि द्विवेदी जी काशी के हिंदी विभाग की बनी बनाई परंपरा तोड़ रहे हैं। निसंदेह द्विवेदी जी ने पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन किया था। यह परिवर्तन बहुत क्रांतिकारी न था। अपनी ओर से उन्होंने एक हद तक उसे संतुलित करने का प्रयास ही किया था। मसलन एमए के पाठ्यक्रम में निराला बहुत उपेक्षित थे, इसलिए निराला के तुलसीदास जैसे अमर काव्य का समावेश किया। इसी प्रकार बीए की कक्षाओं के सामान्य हिंदी छात्र प्रेमचंद्र के उपन्यासों से सर्वथा अपरिचित रह जाते थे। उन्हें प्रेमचंद्र से परिचित होने का अवसर दिया गया। बस इसी तरह के छोटे मोटे परिवर्तन किए गए। अब इन परिवर्तनों को विरोध का मुद्दा बनाना तो जरा मुश्किल था। इसलिए आवाज यह उठाई गई कि द्विवेदी जी तो आचार्य शुक्ल के विरोधी हैं और हिंदी विभाग से शुक्ल जी के विचारों की परंपरा को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। निश्चय ही यह आरोप विश्वसनीयता का आभास देने वाला था। हिंदी साहित्य की भूमिका और कबीर नाम की कृतियों में सचमुच ही द्विवेदी जी आचार्य शुक्ल की कुछ मान्यताओं का खंडन कर चुके थे, किंतु इसके साथ ही यह भी सच है कि द्विवेदी जी ने आचार्य शुक्ल के प्रति अपनी श्रद्धा देने में कभी कोई कमी नहीं दिखलाई। श्रद्धा का प्रमाण स्वयं हिंदी साहित्य की भूमिका का यह वाक्य है, भारतीय काव्य लोचन शास्त्र का इतना गंभीर और स्वतंत्र विचारक हिंदी में तो दूसरा हुआ ही नहीं, अन्यान्य भारतीय भाषाओं में भी हुआ है या नहीं ठीक नहीं कह सकते, शायद नहीं हुआ। यह घोषणा 1940 की है, आचार्य शुक्ल के निधन से ठीक पहले। आचार्य शुक्ल के महत्व के बारे में द्विवेदी जी के ये वाक्य एक तरफ और सारी पोथियां एक तरफ, यह उक्ति उन सब पर भारी पड़ती है। आचार्य द्विवेदी जी से पहले किसी ने आचार्य शुक्ल के महत्व की प्रतिष्ठा इतनी उच्च भूमि पर की है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इस घोषणा का ऐतिहासिक महत्व समझने के लिए नंद दुलारे वाजपेयी के शुक्ल जी पर लिखे पहले दो आक्रामक लेखों को याद कर लेना काफी है, जो आगे चलकर हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी में संकलित हुए। फिर भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में द्विवेदी जी को यदि शुक्ल जी विरोधी के रूप में प्रचारित किया कर जा रहा था तो मानना पड़ेगा कि विरोधियों का शुक्ल पक्ष अपनी घोषणा के बावजूद कुछ और था। काशी का यह शुक्ल पक्ष वस्तुतः आचार्य शुक्ल का कृष्ण पक्ष था। घोर दकियानूसी हत्यारों को छिपाने के लिए आचार्य शुक्ल के उज्जवल नाम की नकाब या मिथ्या विरोध स्थानीय एशिया द्वेष का एक उदाहरण ही बनकर रह जाता यदि इसी दौरान एक साहित्यिक महत्व की घटना न घटी होती। सन 1955 की गर्मियों में आई डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, पुस्तक के लिखने की आवश्यकता यह बतलाई गई कि पिछले वर्षों में शुक्ल जी पर तरह तरह के आक्षेप किए गए थे। भूमिका में आक्षेप करने वालों की जो सूची दी गई है उनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम नहीं है, लेकिन पुस्तक के अंदर मुख्य रूप से यदि किसी के आक्षेपों का जवाब दिया गया है तो वह द्विवेदी जी का है। विशेषतः संत साहित्य में योगियों की भूमिका और इतिहास जातीयता और साहित्य के रूप में शीर्षक दो अध्यायों में निष्कर्ष यह निकलता है कि आचार्य शुक्ल तो अपने विचारों में मूलतः प्रगतिशील हैं और द्विवेदी जी प्रगति विरोधी। इस पुस्तक के कुछ ही दिनों बाद अपनी पत्रिका समालोचक के एक अंक में डॉक्टर शर्मा ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में संपन्न डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के शोध प्रबंध सूर्य पूर्व ब्रजभाषा की लंबी समीक्षा आचार्य शुक्ल और ब्रजभाषा की परंपरा शीर्षक से प्रकाशित की। इस समीक्षा का अंत इस प्रकार होता है, इस ग्रंथ में शुक्ल जी को तो धता बताई गई है और उन आचार्यों की स्तुति की गई है जो शोध ग्रंथ के निर्देशक थे या आगे उनके परीक्षक हो सकते थे। इस मनोवृत्ति को बढ़ावा देने वाले ये आचार्य लोग ही हैं जो शुक्ल जी के समान आदर और सम्मान न पाने से हिंदी भाषियों से रुष्ट हैं। प्रसंगवश एक जगह यह भी कहा गया है कि फिर द्विवेदी जी स्वर्गीय आचार्य शुक्ल के संस्थानापन प्राध्यापक हैं, किंचित से अधिक रोष भी उन्हें शोभा दे सकता है। समुची समीक्षा की दिशा स्पष्ट है, शुक्ल जी की कुर्सी पर बैठकर द्विवेदी जी ईर्ष्या व स्वयं तो उनका विरोध कर रही है, अपने शिष्यों को भी ऐसा करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। अंततः आलोचना के लक्ष्य है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य और अध्यक्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी। आखिर काशी के रूढ़ीवादी शुक्ल पूजक भी तो द्विवेदी जी पर यही आरोप लगा रहे थे। हुआ यह कि इस आलोचना से उन्हें एक मजबूत आधार मिल गया, दिशाएं भी भले ही विपरीत हो गईं, लक्ष्य तो एक था। प्रत्यक्ष संबंध भले न हो, परोक्ष संबंध तो जुड़ ही गया। इतिहास की यह भी एक विडंबना ही है। प्रेमचंद के पक्षधर प्रगतिशील आंदोलन के सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी को काशी के पंडितों द्वारा छेड़े हुए धर्म युद्ध में कैसी प्रगतिशील सहायता मिली? गोया इतना ही नहीं, इतना ही काफी न था कि इसी समय इतिहास को एक और व्यंग्य सूझा। प्रयोगवादी शिविर का भी आचार्य द्विवेदी को लेकर सहसा मोह भंग हुआ। प्रयोगवादियों को लगा कि शांति निकेतन के हजारी प्रसाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आकर एकदम राज्याश्रित हो गए। नेतृत्व संभाला डॉक्टर धर्मवीर भारती ने, जिन्हें अपना शोध प्रबंध सिद्ध साहित्य पूरा करने के लिए आचार्य द्विवेदी के पास शांति निकेतन तक जाना पड़ा था। भारती जी ने द्विवेदी जी की धुरीहीनता प्रमाणित करने के लिए एक अच्छा खासा लेख ही नहीं लिखा, बाण भट्ट शीर्षक एक कविता भी लिख डाली। सहसा ज्ञानोदय हुआ कि सारा द्विवेदी साहित्य मिथ्या है, सत्य है राजा हर्षवर्धन के हाथों से मिला हुआ पान का सुगंधित एक लघु बीड़ा, चाहे वह जूठा हो पर उस पर लगा हुआ वर्कदार सोना था। और अंत में हाय बाण भट्ट, हाय तुमको भी आखिर यही होना था। इस बाण भट्ट शीर्षक कविता में जाने कैसे आत्मकथा शब्द जुड़ गया। यह भी एक तरह से काशी के पंडितों द्वारा लगाए गए आरोप का ही भाषांतर था। वे भी तो यही कहते थे कि हजारी प्रसाद को राजनेताओं की कृपा से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का आचार्य पद मिला। साहित्य विद्या और हिंदी की पूंजी उनके पास कुछ नहीं है। इस धारणा की दृढ़ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आचार्य द्विवेदी जी के निधन के बाद भी काशी के उन्हीं पंडितों में से एक ने अवसर के उपयुक्त सामान्य शिष्टाचार का परित्याग करते हुए व्यक्तित्व दिया कि विभाग में वे राजनीति के कारण ही आए, और अगर वे राजनीतिक न होते तो जितना उत्सव उनके दिवंगत होने पर हुआ उतना न होता। इस अवसर पर भी आचार्य शुक्ल से उनकी तुलना करने का लोभ संवरण न हुआ। बोले, आचार्य शुक्ल के मरने के बाद कोई उत्सव नहीं हुआ, यानी मृत्यु के बाद भी आरोप का अंत नहीं। वे मनुष्य और होंगे जो यह मानते हैं कि शत्रु के मरने के बाद शत्रुता का अंत हो जाता है। इस प्रकार आक्रमण चौतरफा था, यह महज संयोग भी कहा जा सकता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि एक समय विरोध में रूढ़िवादी भी थे, प्रयोगवादी भी और प्रगतिवादी भी। अंततः इस चौतरफा विरोध की परिणति हुई मई 1960 में, जब द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकाल दिए गए। राज्याश्रय वाली बात में कितनी सच्चाई थी, इतिहास ने जैसे जवाब दे दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 10 वर्षों से कसाकश से निजात मिली। एक अरसे से सोच रहे थे कि गंगा जल कलुषित हो गया है, उसे छोड़ना ही पड़ेगा। वे द्विज और होंगे जो उल्लू के नखों की चोट से बुरी तरह घायल हो जाने पर भी अपने पूरे पुष्ट वपू को छोड़ते ही सकते हैं। यहाँ तो वह राजहंस है जो स्वर्ग गंगा के विसलता लेश से संवर्धित हुए हैं और गंगा जल को भी कलुषित पाकर त्याग कर सकते हैं। पंडित जी उन दिनों यह सुभाषित अक्सर दोहराया करते थे, क्रुद्धो लुक नख प्रताप विलगत पक्षा अपि स्वाश्रयम्, ये नोच झंति पुरीस पुष्ट वपु सस्ते केचितन्य द्विजः, ये तो स्वर्ग तरंगिणी बिल विस लता लेशेन संवर्धिता, गांगाम नीरम अपि त्यज्यन्ति कलुषम ते राजहंसा वयम्। इन 10 वर्षों की कमाई का एक फल यह भी है कि अपना कहने को तो काशी में एक मकान हो गया था जहां सिर छुपाया जा सकता था, वरना विश्वविद्यालय छूटने के बाद तो खड़े होने के लिए सड़क ही होती। 30 वर्ष बाद काशी ने फीत फेंका, इस बार ठौल मिला पश्चिमोत्तर दिशा में। शिव के त्रिशूल से गिरे तो शिव के आलिक शिवालिक पर चंडीगढ़ क्या फर्क पड़ता है। अपनी काशी छूटी तो चाहे जो हो शहर, जब मेकदा छूटा तो फिर अब क्या जगह की कैद। मस्जिद हो मदरसा हो कोई खानकाह हो, इस बार की पीड़ा ऐसी थी कि किसी के सामने व्यक्त नहीं की जा सकती थी। यह पीड़ा नहीं थी कि यह अपमान था। न किसी को पत्र लिखा, न किसी पत्र में इसका जिक्र किया तो मैं नहीं जानता। इस मना स्थिति की पहली अभिव्यक्ति हुई कुटज में, जिसके प्रथम दर्शन उसी पासों की कादंबिनी में हुए। चंडीगढ़ के नए ठिकाने पर पहुंचने के बाद ही उस भाव को वाणी मिली। अंतर भी कितना, कहां अशोक के फूल कहां कुटज। सापे नास्तंग मित महिमा वाले यक्ष का अदना अर्घ्य, फिर भी हेकड़ी ऐसी कि कुटज क्या केवल जी रहा है। वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता, आत्मोन्नति के हेतु नीलम नहीं धारण करता, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोड़ता, बगले नहीं झांकता। फिर स्वागत संलाप निरंतर चोट पर चोट सहकर भी जी रहे हैं। सिर्फ जी ही नहीं रहे, हंस भी रहे हैं। बेहया है क्या या मस्त मौला। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफी गहरे बैठी होती हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस तरह अतल गह्वर से अपना भोग्य खींच लाते हैं, और यह जड़ महाभारत तक जाती है। सुखम वा यदि वा दुखम प्रियम वा यदि वा प्रियम प्राप्तम प्राप्तुमुपासित हृदयना पराजितः। निष्कर्ष हृदयना पराजितः, हृदय से अपराजित। कुटज के कुछ ही दिनों बाद देवदारु अनेक वृक्षों और लताओं ने वातावरण से समझौता किया। कितने ही मैदान में जा बसे और काफी खासी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, लेकिन देवदारु की नीचे नहीं उतरा, समझौते के रास्ते नहीं गया और उसने अपनी खानदानी चाल नहीं छोड़ी। झूमता है तो ऐसा मुस्कुराता हुआ मानो कह रहा हो, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ। अशोक के फूल के लेखक की लेखनी से जी उठने वाला यह आखिरी फूल नहीं वृक्ष है। इसके बाद फिर यह सुर न सधा, अब यह सिर्फ मस्ती ही नहीं रही, मस्ती में थोड़ी तलखी भी आ मिली। फूल कांटों की तरह नुकीले हो गए, लेकिन काशी अब भी नहीं भूला। 7 साल बाद चंडीगढ़ छोड़ने से ठीक पहले मनोहर श्याम जोशी ने से बातचीत का यह टुकड़ा, यो तो सारा का सारा क्षेत्र, हिंदी का क्षेत्र या कहे मध्य देश बहुत रक्षणशील है, परंतु काशी इस मामले में 2 हाथ आगे ही रहा है। फिर भी शांति निकेतन से लौटने पर मैंने देखा कि आधुनिकता के भौतिक पक्ष का इस नगर को भी कुछ स्पर्श मिल गया है, लेकिन आधुनिकता की आत्मा वहाँ अब भी दुर्लभ थी। बात बात में मुझे शांति निकेतन और रविंद्रनाथ को लेकर ताना दिया जाता था, कुछ इस ढंग से मानो उदार होना या सार्वभौम दृष्टि रखना कोई बहुत बड़ा अपराध हो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मैंने कबीर पढ़ाना शुरू किया तो एक मित्र कुलपति से शिकायत कर आए कि जिस विभाग में तुलसीदास से पढ़ाई शुरू होती है उसमें कबीर से शुरू होने लगी है, और फिर विश्वविद्यालय से निकालने जाने की बात याद आ गई। कहने लगे, जीवन में कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब मेरे आदर्श यथार्थ से बुरी तरह टकराए हैं। मुझे अपार मानसिक कष्ट भोगना पड़ा है, लेकिन हर बार यही आस्था मुझे सिनिक होने से बचा गई है। मैंने मन ही मन एक तत्ववाद स्वीकार कर लिया है कि भूलना और सह पाना भगवान की विशेष कृपा से आता है। जो इस कृपा का पात्र बन सका है वही होम करते हाथ चलने पर विचलित नहीं होता। मुझे बड़ा धक्का लगा जब काशी विश्वविद्यालय में ऐसा किया गया जिसका कोई कारण नहीं था और जिसके बारे में बाद में स्वीकार कर लिया गया कि वह गलत था। मैं भरसक यत्न करता हूँ कि चर्चा का विषय न बनूं, लेकिन इस निर्णय के बाद बन गया। विश्वविद्यालय से मेरा संबंध टूटा और मुझे अपयस का भागी बनना पड़ा। लोगों ने मुझसे कहा कि मैं अदालत में जाऊं, मगर मैं नहीं गया। मित्रों ने कहा तुम कायर हो, तुम बेवकूफ हो। मैं यही सोचता रहा कि मैंने क्या गलती की है जिसका दंड मिला। बहुधा मैं जब उद्वेलित होता हूँ मन को शांत करने के लिए कोई पुस्तक पढ़ने बैठ जाता हूँ। उद्वेलन की उस घड़ी में गुरुदेव की एक पुस्तक उठा ली और मेरी दृष्टि एक गान पर पड़ी जो पहले कभी नहीं पढ़ा था। इस आशय की चार पंक्तियाँ कि कर पल्लव से तुमने मुस्कुराते हुए एक चपत लगा दी है तो भला मैं क्यों रो, इन पंक्तियों से मेरे मन को बल मिला और मैंने फैसला किया कि मेरी अदालत कोई और है। और उस अदालत ने काशी फिर बुलाया। 7 साल बाद अक्टूबर 1967 में उम्र के 60 साल पूरे हो चुकने पर, तब तक पुराने स्थानीय विरोधी अवकाश पा चुके थे शैक्षिक सेवा से। मनसा राम ने सोचा मार्ग निष्कंटक है, हिसाब लगाया, काशी आ गया, बड़ा स्वागत हुआ, फूलमालाओं से लद गए अपनी उस अदालत की न्याय बुद्धि में। निश्चय ही आस्था और दृढ़ हुई होगी, लेकिन काशी तो काशी, फिर अड़ंगा लगा। हिंदी विभाग के आचार्य की मिली हुई कुर्सी दोबारा छिन गई। जिस राज्य आश्रय के लिए इतने बदनाम हुए वह भी काम न आया। कुलपति ने अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिए रेक्टर पद दिया। यही है वह थोड़े दिन की महंती, आंचल का अंगार, कुलपति गए कुलपति आए। स्वभावतः उन्हें अपने अनुकूल नए रेक्टर की जरूरत थी। संयोग से हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण योजना के निदेशक की कुर्सी खाली थी बहुत दिनों से। संतोष पारितोषिक के लिए इसे उपयुक्त जगह क्या हो सकती थी। 2 साल की महंती से मुक्त होकर रेक्टर द्विवेदी व्याकरण योजना के निदेशक बने। एक ऐसी योजना जो सुनने में बहुत बड़ी लगती है और किसी समय उसमें 5-6 शोध सहायक भी कार्यरत थे, लेकिन थी वह वस्तुतः हिंदी विभाग का एक अनुभाग ही। और हिंदी विभाग के पूर्वभूत आचार्य और अध्यक्ष जब इस अनुभाग के पूर्णकालिक निदेशक बनकर आए तो वहाँ उसकी उनकी सहायता के लिए शायद एक लिपिक अथवा आशुलिपिक मात्र सुलभ था। दुनिया की नजर में अफसर का रुतबा उसके दफ्तर से होता है, दफ्तर के तामझाम से, सहयोगियों कर्मचारियों चपरासियों के लाव लश्कर से। यहाँ महादेवी जी के गीत को चरितार्थ करता हुआ या मंदिर का दीप अकेला, लेकिन दुनिया के सामने इसे स्वीकार कैसे किया जाए। लिहाजा हिंदी के ऐतिहासिक व्याकरण की रचना के ऐतिहासिक महत्व के विराट मानचित्र का घटा टोप पूर्ण कथन अनुकथन उन दिनों यदि खेचव चेखव का कोई पाठक पंडित जी से मिला होगा तो उसे डार्लिंग कहानी जरूर याद आई होगी। व्याकरण के अलावा कोई बात नहीं करते थे। साहित्य का व्याकरण लिखने वाला अब भाषा के व्याकरण में सिर खपा रहा था। सामने था 10 वर्षों तक किए हुए निरर्थक काम का अंबार, गर्द गुबार से एकाकार, इसी का जीर्णोद्धार करना था। हाथ लगाया कि उड़ी धूल, तन सारा भर गया, मन भी भर गया। और जो इस हालत में पंडित जी को नहीं देख सकते थे, उन्होंने एक दिन सहसा देखा कि वे अब काशी विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग को छोड़कर उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी संभालने लखनऊ पहुंच गए। काशी फिर छूटा तीसरी बार, लेकिन इस बार का छूटना कुछ ऐसा हुआ कि चाहे तो महीने में आधे दिन घर भी रह सकते थे। गरज कि काशी छूटा तो लेकिन आधा ही, पूरा छूटने का अर्थ था महाप्रस्थान। और वह घड़ी भी जल्द ही आई, अप्रत्याशित पक्षाघात का आक्रमण हुआ 1979 के वसंत में। अशोक में फूल नहीं आए थे, सीरीज में भी नहीं, आम जरूर बौरा गए थे। काशी में इलाज ना हो सका, दिल्ली आए, आए नहीं बल्कि लाए गए, और इस बार ऐसे आए कि फिर काशी लौट कर नहीं गए। सौ भी ना जा सका, शायद काशी ने बुलाया ही नहीं इस बार। यह है उस विषम यात्रा का अंत, जिसे शांति निकेतन से शिवालिक के रूप में अभिहित किया गया है, लेकिन है उसके मध्य में काशी ही। पंडित जी तो यही कहेंगे कि काशी उनके भाग्य में था ही नहीं, लेकिन वे काशी के भाग्य में ही हैं। शांति निकेतन उनके नाम के साथ चाहे जितना चिपका हो, उनका वास्तविक भाव चित्र पूरा होता है काशी से ही। काशी के बिना वे संभव ही न थे, जैसे कबीर, जैसे कि तुलसीदास और जैसे कि प्रेमचंद्र भी। उनका धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र काशी ही था, समवेत युवत्सुओं के साथ। कहने वाले तो कहते हैं कि काशी ने उन्हें क्षति ही पहुंचाई, व्यर्थ का शक्ति क्षय भी हुआ, और वहां रहते जो लिखा वह बाहर रहकर लिखे से कम ही अच्छा है। लेकिन मनुष्य की पहचान संघर्ष भूमि में होती है, पूजा की वेदी पर नहीं। विरोधियों से यह ज्यादा जाना जाता है। काशी का वह संघर्ष निसंदेह बहुत ओछा था, और निराला के शब्दों में द्विवेदी जी भी महसूस करते थे कि जो उत्पात घात आए हैं और निम्न मुझको लाए हैं। लेकिन इसके साथ ही वे यह भी जानते थे कि समाज में व्यापक संघर्ष का एक अंग है, यदि प्रतीक नहीं। जो आदमी अपने स्वास्थ्य की जरा सी गड़बड़ी में भी इतिहास के घटना चक्र की ध्वनि सुनने का आदी था, वह ऐसी सार्वजनिक लड़ाई को निजी समझने का भ्रम कैसे पालता। लड़ाई खत्म हो गई, शीर्षक एक परवर्ती निबंध में द्विवेदी जी लिखते हैं, न जाने मेरे स्वास्थ्य और इतिहास में क्या संबंध है, कि जब इतिहास जरा वेग पकड़ता है तभी मेरे शरीर के नाना जाति के कीटाणुओं में भी हलचल पैदा हो जाती है। मेरे कृपालु चिकित्सक उस धड़कन को अनेक नामों से बताते हैं, पर मेरे अंतर्यामी कहते रहते हैं, यदि तुम्हारी धड़कन नहीं है, कहीं कुछ घट रहा है, कुछ पिट रहा है, कुछ मिट रहा है। हाय रे भाग्य, इतिहास विधाता की सड़क क्या मेरी धमनियों में गुजरती है। ग्रंथावली 10 421 पृष्ठ संख्या। इतिहास विधाता में उनका विश्वास इतना बद्धमूल था कि वे प्रायः अपने कर्मों को उसी के द्वारा प्रेरित समझते थे। गोया इतिहास द्वारा वे विशेष भूमिका के लिए नियुक्त किए गए हो। जिन दिनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्हें बुलाने की बात उठी थी, उन्हीं दिनों सुमन जी को 28-10-1948 में लिखे पत्र में इसी विश्वास की अभिव्यक्ति मिलती है। कहते हैं, काशी जाना या न जाना, सुनाम या बदनाम होना, सब कुछ उसी के हाथ है। मैं निश्चित जानता हूँ कि उसकी कोई बड़ी योजना है, हम लोग निमित्त मात्र हैं। यह जो बैठे बिठाए दुर्भाग्य का ठेला लग गया है, सो न जाने किस महान कार्य की भूमिका है। मेरे मन में इस समय कुछ बड़ा काम करने का जितना उत्साह है, उतना कभी नहीं था। ऐसा क्यों होता है? अपने इस विश्वास पर उन्हें स्वयं भी आश्चर्य था। फिर लगा कि इसे पढ़कर लोग मुस्कुराएंगे, इसीलिए इसी क्रम में आगे मैं कल्पना कर रहा हूँ कि आप इतना पढ़कर मुस्कुरा रहे होंगे। शायद सोचने लगे हो कि यह भी निष्क्रियता का प्रचार है, मगर मैं आपको कैसे बताऊं कि यह ऐसा कुछ नहीं है। जब जब मैं अनुभव करता हूँ कि उधर से कृपा का कुछ प्रमाण मिल रहा है, तब तब मुझे कुछ नया करने का उत्साह आता है। केवल उस समय इतना ही सोचता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और कोई और कर रहा है। अंत में मैं अपनी स्थिति कुछ और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मैं अच्छा आस्तिक कभी नहीं रहा हूँ, परंतु बुरा नास्तिक भी कभी नहीं रहा हूँ। बुरा आस्तिक दम्भी होता है और बुरा नास्तिक अहंकारी। मैं तो सुमन जी एक अद्भुत मिश्रण हूँ, मुझ में थोड़ा दम्भ है पर अहंकार कम है। कभी कभी सोचता हूँ कि अहंकारी होता तो अच्छा था, अहंकारी अच्छा दम्भी नहीं। निःशस्त्र कर देने वाली इस ईमानदार स्वीकारोक्ति के सामने वे सभी संभाव्य आलोचनाएं तो ध्वस्त हो ही जाती हैं, जिनके पीछे आत्मनिरपेक्ष इतिहास को ही कर्ता मान लेने का दंभ है। साथ ही वे आपत्तियां भी जो इतिहास की वस्तुनिष्ठ शक्ति को नकार कर अपनी ही कर्तव्य शक्ति के अहंकार से उद्भूत हैं। फिर भी जैसा कि द्विवेदी जी ने कहा है, अहंकारी अच्छा दंभी नहीं, क्योंकि उसमें बुरे आस्तिक की आत्मवंचना होती है, जिससे अहंकारी कम से कम मुक्त तो होता है। यह विश्वास न भाग्यवाद है न नियतिवाद। वे ज्योतिष के पंडित जरूर थे, लेकिन जैसा कि लड़ाई खत्म हो गई वाले निबंध में शिव प्रसाद जी का हवाला देते हुए वे अपने खास अंदाज में कहते हैं, मैं ज्योतिष जानता हूँ वह मानते हैं। ग्रंथावली 10 435 पृष्ठ संख्या। उन्हें ज्योतिष मानने की जरूरत न थी, क्योंकि वे जानते थे। इसलिए एक ओर यदि वे इतिहास विधाता की शक्ति को जानते थे, तो दूसरी ओर अपनी सीमा और शायद संभावना को भी पहचानते थे। वस्तुतः वे यथार्थवादी थे। आखिरकार दिनों का लिखा एक लेख है, जिंदगी और मौत के दस्तावेज, फरवरी 1978 की कादंबिनी में छपा था। मृत्यु से पहले जैसे अपनी जिंदगी का सिंहावलोकन करते हुए कहते हैं, शुरू से अंत तक जीवन में जो करना चाहा वह न कर सका, और जिसकी बिल्कुल आकांक्षा नहीं थी वही हो गया। बनने चला था ज्योतिषी, बन गया हिंदी का लेखक। जो लिखना चाहा था वह नहीं लिखा, अप्रत्याशित रूप से कुछ ऐसा लिख गया जिसकी कल्पना भी मन में नहीं थी। इसीलिए वे अक्सर अपने आप को शूद्र जाति का ब्राह्मण कहा करते थे। उनकी नजर में शूद्र जाति के ब्राह्मण वे हैं जो किसी दूसरे के इशारे से विनियुक्त होकर कलम घसीटते हैं। इनके अलावा वैश्य जाति के ब्राह्मण वे हैं जो अर्थोपार्जन के लिए कलम को तराजू की भांति इस्तेमाल करते हैं। क्षत्रिय जाति के ब्राह्मण वे हैं जो युद्धम देही का बाना धारण किए हुए कलम को ताने रहते हैं। और सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण वे हैं जो अपनी योजना के अनुसार लिखते पढ़ते हैं। ग्रंथावली 9 पृष्ठ संख्या 113। अब ब्राह्मण चाहे तो अपनी श्रेष्ठता पर गर्व कर सकते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे शूद्र ब्राह्मण पर तरस भी खा सकते हैं, लेकिन तरस खाने से पहले एक बार अच्छी तरह देख ले कि वे जिस दूसरे के इशारे पर प्रयुक्त होकर लिखने का जिक्र कर रहे हैं, वे कोई आतंककारी शासक, आश्रयदाता राजा, सेठ या नेता है अथवा और कुछ। विडम्बना यह है कि द्विवेदी जी को अपनी इस स्थिति पर कोई अफसोस भी नहीं था। वे उसी सहज स्वर में कहते हैं, अफसोस करना बेकार है, शायद अफसोस करने में भी मैं बहुत अधिक स्वतंत्र नहीं हूँ। शंका हो सकती है कि यह चरम निराशावाद है। जो लोग आचार्य द्विवेदी के आरंभिक आत्मविश्वास और ऊर्जा से परिचित हैं, उनके लिए ये वचन वृद्धावस्था की थकान के सूचक प्रतीत हो सकते हैं। किंतु इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उसी निबंध के इस वाक्य पर ध्यान देना चाहिए। यह निराश भाव नहीं है, आशा का वाक्य है, क्योंकि विधाता की योजना मंगल की है। ग्रंथावली 9 पृष्ठ संख्या 112। निराधार है यह शंका कि हजारी प्रसाद द्विवेदी वृद्धावस्था में शांत क्लांत होकर समर्पण कर बैठे थे। 19 जनवरी 1878 के साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए उन्होंने एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक है, भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। लेख का आरंभ एक मित्र के इस कथित अभियोग से होता है कि देश की दुर्दशा को देखते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अर्थात इस दुर्दशा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी भर्त्सना नहीं कर रहा हूँ। यह एक भयंकर अपराध है। कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी जिस प्रकार मौन धारण किया था, वैसे ही कुछ मैं और मेरे जैसे कुछ अन्य साहित्यकार चुप्पी साधे हैं। भविष्य में इसे उसी प्रकार क्षमा नहीं करेगा जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया। और द्विवेदी जी सोच में पड़ जाते हैं, स्वीकार करते हैं कि प्राचीन काल में भीष्म जैसा धर्मज्ञ और ज्ञानी खोजना कठिन है। महाभारत का शांति पर्व इसका गवाह है। कोई तो समस्या भले सामने आदमी ने छोड़ी नहीं, प्राचीन काल के ज्ञानियों में भीष्म मुझे सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, अपने अगाध इतिहास बोध के कारण। युधिष्ठिर के हर प्रश्न के उत्तर में वह प्रायः यह कहकर शुरू करते हैं, अत्रायु दाहरन्ति मिति इहाशम पुरातनम, यहाँ भी लोग इस पुराने इतिहास की नाजीर देते हैं। इसके अलावा भीष्म का त्याग भी महान है, उदाहरण है ब्रह्मचर्य का भीष्म का भीषण व्रत, फिर भी उन्हें अवतारों में शामिल नहीं किया गया। विचित्र बात है कि उनके गुरु परशुराम को अवतार मान लिया गया है, जबकि वे ज्ञान विज्ञान की जानकारी में भीष्म से कम तो थे ही, असंतुलित और क्रोधी भी थे। चिंतन के क्रम में भीष्म के साथ गुरु द्रोणाचार्य भी याद आते हैं, क्योंकि द्रौपदी का अपमान देखकर चुप्पी रह जाने वालों में वे भी थे। द्रोण के बारे में द्विवेदी जी की टिप्पणी है, द्रोण गरीब अध्यापक थे, बाल बच्चे वाले थे, गरीब ऐसे कि गाय भी पाल नहीं सकते थे। बेचारी ब्राह्मणी को चावल का पानी देकर दूध मांगने वाले बच्चे को फुसलाना पड़ा था। उसी अवस्था में लौट जाने का साहस कम लोगों में होता है। इस आत्मीय सहानुभूति के बाद वे तुरंत भीष्म के बारे में पलटकर कहते हैं, पर भीष्म तो पितामह थे, उन्हें बाल बच्चों की फिक्र भी नहीं थी, भीष्म को क्या परवाह थी। सारे सोच विचार के बाद अंत में निर्णय यह कि जान पड़ता है कि भीष्म में कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय में कहीं कोई कमजोरी थी, वह उचित अवसर पर उचित निर्णय नहीं ले पाते थे। यद्यपि वह जानते बहुत थे, तथापि कुछ निर्णय नहीं ले पाते थे, उन्हें अवतार न मानना ठीक ही हुआ। आजकल भी ऐसे विद्वान मिल जाएंगे जो जानते बहुत है, करते कुछ भी नहीं। करने वाला इतिहास निर्माता होता है, सिर्फ सोचते रहने वाला इतिहास के भयंकर रथ चक्र के नीचे पिस जाता है। इतिहास का रथ वह हाँकता है जो सोचता है और सोचे हुए को करता है। ग्रंथावली 9 251 पृष्ठ संख्या। संकेत स्पष्ट है, इतिहास का रथ हाँकने वाले कृष्ण थे और रथ चक्र के नीचे पिस जाने वाले भीष्म। द्विवेदी जी को इस भीष्म से कोई सहानुभूति नहीं है, सहानुभूति है तो द्रोण से, लेकिन श्रद्धा है श्री कृष्ण के प्रति ही। आखिर कृष्ण होते ही कितने हैं जो हजारी प्रसाद से यह अपेक्षा रखें कि वे कृष्ण क्यों न हुए। कृष्ण उनके आराध्य थे, यही क्या कम है। फिर भी उनमें पीड़ा का बोध है, यह पीड़ा गुरु द्रोण के प्रति सहानुभूति के रूप में व्यक्त हुई है, यह पीड़ा अपेक्षित कर न पाने की। हम में से कितने ही हैं जिन्हें यह पीड़ा भी नहीं होती। जो ज्यादा बड़े बौद्धिक हैं, उन्हें उनके पास कुछ न करने का विपुल तर्क शास्त्र है। द्विवेदी जी ज्यादा ईमानदार थे, उन्हें पीड़ा होती थी। अपने प्रिय कवि कबीर की वह पंक्ति वे अंतिम दिनों में अक्सर दोहराते थे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए, जगना अर्थात विवेक के साथ जगना। सोचना, मृत्यु से कोई साल भर पहले लिखे मनुष्य का भविष्य शीर्षक निबंध में उन्होंने लिखा है था, अगर पीड़ा है तो आशा है। जीवन में न जाने कितने रूपों में पीड़ा में छिपी हुई आशा को देखा था। ग्रंथावली 9 453 पृष्ठ संख्या। कभी कभी लगता है कि पंडित जी में पीड़ा का यह बोध यदि कुछ कम होता तो वे कुछ और दिन जीते। लेनिन की पत्नी क्रुप्सकाया ने लेनिन के बारे में कहीं लिखा है कि वे कुछ और जीते यदि कुछ कम संवेदनशील होते। लेकिन द्विवेदी जी इस पीड़ा को पालने वाले न थे, न उस पीड़ा में वे रस ही लेते थे। आखिरी दिनों में ही लिखे हुए क्या निराश हुआ जाए, शीर्षक में लेख में वे लिखते हैं कि ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वास खात नाम की चीज मिली है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखूं जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाए, परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जहां लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। ग्रंथावली 9 450 पृष्ठ संख्या। ठगे जाने का अनुभव व्यक्तिगत भी था और सामाजिक भी। इस यथार्थ से वे अनभिज्ञ न थे कि खलई का हुलास बेहिसाब बढ़ गया है और उसी अनुपात में बल्कि कुछ अधिक मात्रा में साधुता का सोच भी बढ़ा है, ऐसा हुआ है। धन संग्रह की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने के कारण उन्होंने यह भी लक्ष्य किया है कि सुविधा भोगी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति पिस जाता है, पर उन्हें विश्वास था कि स्वाधीन भारत की बुभुक्षु जनता ज्यादा देर तक यह सब बर्दाश्त नहीं करेगी। ग्रंथावली 9 78 पृष्ठ संख्या। इसीलिए वे पीड़ा से अवसन्न न हुए। यह विश्वास उन्हें अपने देश की जनता से भी प्राप्त होता था और अपनी परंपरा से भी। समाज के एक छोटे से तबके से मिलने वाला तिरस्कार उनकी इस आस्था को डिगा न सका। इसलिए तुलसीदास का स्मरण करते रहते समय जहां उन्हें स्वयं अपने जीवन की विपन्नता विरोध आदि याद आते थे, वहीं यह भी भूलता नहीं था कि परिस्थितियां मनुष्य को कष्ट पहुंचा सकती हैं, धक्का दे सकती हैं, पर रगड़ कर नष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य परिस्थितियों से बड़ा है, बशर्ते वह मनुष्य हो। किसी तरह जीवित रहकर मरने की तैयारी करते रहने वाला भुनगा नहीं मनुष्य। ग्रंथावली 4 494 पृष्ठ संख्या। हजारी प्रसाद द्विवेदी मनुष्य थे, तुलसीदास के समान ही काशी के ब्राह्मण, समाज में जो अछूत लेकिन मनुष्य।